दौला पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 4
ओम नमः सिद्धे
सिद्धमणन्तमणिन्द्रिय मणुव मम पत्र सोखमणवच्चम् केवलपहोहणिश्चिय दुन्नयति विरञ्जिनम् नमः।
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें जो प्रथम हमने जीव स्थान देखा था, उसकी सब प्ररूपना चल रही है पहले पुस्तक से। अभी हम 430 पृष्ठ पर आए।
हाँ, तो आपका प्रश्न। विग्रह गति है, विग्रह गति और मिश्र, तो विग्रह गति खत्म होने के बाद वो पर्याप्त स्टार्ट होती है।
हाँ, आपका प्रश्न है विग्रह गति और वो मिश्र का योग जो है, तो विग्रह गति यानी ये मोड़ वाली गति। जब अंतिम मोड़ के बाद जीव वहाँ शरीर ग्रहण चालू कर जाए, उसी समय पहुँचता है, उसी समय
वहाँ से पर्याप्त चालू होते हैं,
वहाँ पर्याप्त विग्रह गति में पर्याप्ति नहीं है, फिर भी उस जीव को अपर्याप्त कहेंगे।
देखो, बात ऐसी है, जीव के साथ तीन शरीर होते हैं, कार्मण शरीर, तेजस शरीर और अवधारिक या वैक्रिय, जो भी हो। विग्रह गति में दो शरीर रहेंगे, और ये जो पर्याप्ति है वह मतलब खास करके अवधारिक शरीर या वैक्रियक शरीर ग्रहण करने के जो कोई परमाणु ग्रहण करेंगे, उसकी शक्ति वहाँ चालू होती है जहाँ वो जन्म लेता है।
उसके पहुँचने के लिए तीन समय गिनते हैं, परंतु उसके मोड़ दो है। और दो मोड़ के पहले पहले दो समय तक वो अनाहारक है, तब उसकी पर्याप्ति भी नहीं है, शरीर के परमाणु भी ग्रहण नहीं हो रहा है। जिस समय शरीर के परमाणु ग्रहण हो रहे शुरुआत होती है, उसी समय पर्याप्ति उनकी शुरुआत हो गई।
लेकिन विग्रह गति में कर्म परमाणु ग्रहण करते हैं,
नहीं कर्म का घर वो योग है ना, कर्मण का योग है। अनादि से एक समय भी ऐसा नहीं गया कि जहाँ कर्म परमाणु और तेजस का ग्रहण न होता हो। तेजस और कर्मण का तो उदय हर समय चल रहा है, तो उसका ग्रहण भी हर समय चल रहा है।
देखो, यहाँ सिर्फ हम बोलते हैं, यहाँ मैंने कोई व्यक्ति बोलता है ऐसा नहीं, आगम का आधार है ना, कर्मण का योग है ना, उसके कारण कर्मों को और तेजस शरीर को, तेजस परमाणुओं को ग्रहण करेगा।
और ये सारे उदय की उच्छित्ति वगैरह हमने देखी थी, तेजस कर्मण शरीर नाम कर्म जो है उसका उदय 13वें के अंत तक है, तो वहाँ तक उसके तेजस और कर्मण का ग्रहण हर समय चल रहा है। जहाँ हम अनाहारक कहते हैं ना, वहाँ पर भी कर्मण का ग्रहण है।
नो, सब तो वहाँ पे कर्म है ही नहीं ना अभी।
कहाँ पर
13वें, आई मीन ये सिर्फ योगी है ना,
योग है तो, योग है तो उसके कारण शरीर के परमाणु का भी ग्रहण चल रहा है ना, और कर्म का भी। हाँ, एक साता वेदनी आती और चली जाती है। हाँ, और वहाँ तेजस शरीर का भी ग्रहण है, क्योंकि हम कर्मों के उदय के अनुसार उसको देखते हैं। कर्मण शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म, औदारिक शरीर नाम कर्म, वो सारे वो 13वें के अंत तक उदय है, तो उसका ग्रहण भी चलेगा। यानी हमने पहले वो उदय की विच्छिति याद की थी ना, बंद विच्छिति थी। अच्छा, कोई बात नहीं। तो अभी हम यहाँ 430 पेज पर आ गए, और यहाँ जो हमने जीवकांड में आलाप देखे ना, वो 100 पेजेस में वही है, यहाँ पर सब विषय, अन्य नया तो कुछ नहीं है। तो कल तो जो मेहमान आए थे उनके लिए हम विस्तार से लिया था, अभी यहाँ बढ़ते आगे। देखो, कल हमने सासाधन समय दृष्टि जीवों के सामान्य से, सामान्य कहने से पर्याप्त अपर्याप्त दोनों को इंक्लूड करके बताई थी बात। अब यहाँ केवल मात्र पर्याप्तों की बात पहले लेंगे। तो सासाधन समय दृष्टि पर्याप्त जीवों के ओघ आलाप कहने पर, तो हम पहले में पहले देखेंगे गुणस्थान कौन सा है तो बता दिया ना, दूसरा है। अब जीव समास कौन कौन से है? संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, क्योंकि पर्याप्त उन्होंने बता दिया। और सासाधन कब होता है? जब सम्यक से गिर कर आता है उपशम समय दृष्टि, तब होता है। तो उसके संगी पंचेंद्रिय, वो जीव समास हो गया उनका। देखो एक दूसरा, एक एक पढ़ते पढ़ते हम आगे बढ़े। एक दूसरा गुणस्थान 430 पेज पर, ये नीचे का पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ। सासाधन के पर्याप्त जीवों की आलाप देख रहे हैं, संगी पर्याप्त जीव समास। अब उसके पर्याप्तियां कितने? छह है। तो छह पर्याप्तियां कहेंगे हम, प्राण है संगी पंचेंद्रिय, दसों प्राण हो गए, चारों संज्ञा है क्योंकि सासाधन वाला है, चारों गतियों में सासाधन वाले पाए जाते हैं इसलिए चारों गतियां लिए। पंचेंद्रिय जाति वालों में ही होगी इसलिए पंचेंद्रिय जाति, और जो पंचेंद्रिय वो त्रस्कायिक होते हैं इसलिए वो त्रस्काय वाले, यानी अपेक्षा अलग अलग है तो उसका नाम भी अलग अलग कहेंगे आप। अब यहाँ तो पर्याप्त जीव है तो यहाँ कोई वैक्रिक मिश्र, उदारिक मिश्र नहीं होगा, आहारक आहारक मिश्र दोनों ही नहीं होंगे, कारमण भी नहीं होगा। तो दस दस हो गए, उनको तीन मिश्र कारमाण का योग नहीं कहा मैंने, कारमाण शरीर नाम कर्म का उदय, उसके कारण क्या होता है? जीव कर्मों का ग्रहण करता है, कर्म को ग्रहण करने की शक्ति, जो हम वो योग कहते हैं। ये वाला योग अलग, ये हाँ कारमाण का योग, ये कब कहने में आता है? मात्र विग्रह गति में। आप कहेंगे तो क्या कारमाण का ग्रहण नहीं होता? हर समय हो रहा है वो शरीर नाम कर्म के उदय में, परंतु यहाँ ऐसे ही जो कहाँ कौन सा योग कहना उसकी आगम के अनुसार हम चलते हैं उसके। अने आहारक के तो दोनों ही नहीं होंगे क्योंकि दूसरा गुणस्थान है, अन्य दो मिश्र, ये दो और दो चार और एक कारमाण, 15 में से 5 गए 10 रहे। तीनों वेद वालों के होगा ये, चारों कषाय है ही, चौथा दूसरा गुणस्थान है, चार ही कषाय है, तीनों अज्ञान है क्योंकि पहले और दूसरे गुणस्थान में हम कुमति कुष्ठ और विभंग कहते हैं, यहाँ पर भी है।
सामान्य पीछे देख रहे हैं?
नहीं नहीं नहीं, पर्याप्त की कल हमने सामान्य देखी उन लोगों के साथ, आज पर्याप्त देख रहे थे। नीचे से दूसरी लाइन पढ़ रहे थे, असंयमी है, चक्षु और अचक्षु दो दर्शन है। अब सासाधन है तो भव्य ही है क्योंकि एक बार अभी समय को प्राप्त कर चुके हैं, भव्य तो बाद में, पहले तो द्रव्य और भाव रूप लेशा। हाँ तो छह लेशा होगी, द्रव्य से छह क्योंकि पर्याप्त जीव है ना, और हम केवल वो मनुष्यों को नहीं देखना है, हमको सब पशु पक्षी सब आगे पंचेंद्रिय जो जो है जो सासाधन प्राप्त कर सकते, भव्य ही है। सम्यक तो मार्गणा में उनको सासाधन सम्यक तो कहेंगे, और ये संगी मार्गणा में संगी है, पर्याप्त है तो आहारक ही है। अब सासाधन गुणस्थान में दर्शन उपयोग है क्या ज्ञान उपयोग है? तो फिर दोनों है। तो यही उन्होंने यहाँ नंबर 7 के टेबल में बताया है, यंत्र में जो जो अभी हमने पढ़ा ना वो सब उसी में लिखा है। आगे बढ़े, अभी उन्हीं सासाधन समय दृष्टि अपर्याप्त जीवों के उघालाप कहने पर, करेक्शन वो अभी 8 नंबर के टेबल में, दस योगी है ना नंबर 7 में। आप कहाँ बढ़ नंबर 7 का टेबल देखना है, आप कहाँ देख रहे थे? वो 13 वाला, हाँ हाँ वो सामान्य का था। हाँ देखो अभी हमने जो पढ़ा ना वो 10 नंबर 7 का टेबल था, पर्याप्त का। अभी अपर्याप्त का नंबर 8 का टेबल है। तो अभी हम पहले ऊपर से पढ़ेंगे। अपर्याप्त जीव है, गुणस्थान शासन उन्होंने बता ही दिया है, तो दूसरा गुणस्थान, एक शासन गुणस्थान। जीव समास कौन सा है? अपर्याप्त कहना पड़ेगा। संगी पंचमी अपर्याप्त, क्योंकि अपर्याप्तों का आलाप है। अपर्याप्त का अर्थ है वो जो मरण के जस्ट पहले वो प्रथम उपशम से सासाधन में आया है और सासाधन का काल चल रहा है, उस काल में उसका मरण हुआ है, तब जाके वो विग्रह गति में भी उसका सासाधन रहेगा। और वहाँ किसी का जितना समय बाकी है उसके अनुसार वहाँ शरीर पर्याप्ति के पहले तक उसका सासाधन रहेगा। परंतु हमारी हमारा अलग शासन का चल रहा है। उनका ये कहना है जो शासन में आया एक समय वाला ही शासन था, और शासन एक समय वाला खलास हो तो मिथ्या तो चालू हो गया उसका। यदि सम्यक तो होता है मरण के पहले, पूरा समय दृष्टि रहता है तो इमीडिएट नेक्स्ट समय में मर नहीं सकता, अंतर्मुख चला जाता है, बाद में मरण होता है, तो शासन में मरण हो सकता है, ये बात है। तो हमने देखा था संगी अपर्याप्त जीव समास। अब पर्याप्त अंक कहने के लिए हम 6 अपर्याप्त अपर्याप्तियां कहेंगे। और प्राण संगी पंचमी कितने? 7 होते हैं। या नीचे टेबल में 7 अप लिखा है, वो अप नहीं लिखना, 7 इतना ही चाहिए, क्योंकि प्राणों के साथ अपर्याप्त शब्द नहीं लगाते, पर्याप्तियों के साथ पर्याप्त या अपर्याप्त ऐसा शब्द लगाते हैं। देखो दूसरा गुणस्थान है तो सभी संज्ञा, यहाँ उन्होंने प्राण भी गिना है, मनोबल वचन बल और श्वासोश्वास के बिना 7 प्राण, यानी 10 में से 3 घटा दिए, चारों ही संज्ञाएं हैं। अब गतियां कितनी कितनी होगी?
नरक बिना,
क्योंकि सासाधन के साथ मरकर नरक में नहीं जाता, नारकी जो सासाधन में आ सकता है, छठे नरक तक के नारकी तो सासाधन के साथ मरकर ऊपर भी मनुष्य 3 इंच में भी आ सकते हैं। हाँ, मरकर सासाधन के साथ कोई नरक में नहीं जाता, इसलिए 3 ही गतियां ली, नरक के बिना, नरक गति बिना 3 गतियां। अब इंद्रिय में पंचेंद्रिय जाति लिखना, कायिक में वो त्रस्काय वाले हैं। अब योगों में देखो ये मिश्र वाला है, तो पहले विग्रह गति में कारमान होगा, अब तिर्यंच मनुष्य में उत्पन्न होता है तो औदारिक मिश्र होगा, देव में जाने वाले के वैकरिक मिश्र होगा, 3 होगा, 3 योग होगा, 3 वेद हो सकते हैं,
3 वेद।
देखो देखो समय तो छूट गया, समय तो और यहाँ उदय की बात है, बंद की बात नहीं है। बंद तो पहले में नपुसक वेद का बंद छूट गया था, दूसरे गुणस्थान में नपुसक वेद का बंध नहीं है, पुरुष स्त्री वेद का बंध है, उदय तो 9वें तक होता है ना स्त्री पुरुष वेद का, तो ये अभी समय दृष्टि नहीं रहा है। हाँ तो स्त्री में जा सकता है, नपुसक भी हो सकता है,
कोई स्त्री है औषमिक समय की हुई और उसका द्रव्य वेद और भाव वेद स्त्री वेद है, वो भी शासन में आ तो पुरुष है।
समय दृष्टि मर के पुरुष सम्यक के साथ, तो वेदक समय दृष्टि भी मरेगा तो पुरुष में उत्पन्न होगा, अकेले नारक में जाने वाले क्षायिक या कृतकृत्य वेदक वाले वो नपुसक वेद के साथ जन्म ले सकते, बाकी तो पुरुष वो सम्यक दृष्टि के लिए, जिसके अभी सम्यक की विराधना हो चुकी है। ख्याल में ही समझ? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी जावे, उसकी पर्याय छूट गई। अभी जो नई पर्याय धारण की उसमें उसको स्त्री पुरुष या नपुंसक वेद तीनों ही हो सकते।
यहाँ तो शासन में पर्याप्त जीव लिया है तो शासन में आने वाला तो उक्षम समय से
गिरकर आया है,
तो ये भी भाव से स्त्री या द्रव्य से स्त्री
नहीं, उसकी चर्चा करने की क्यों जरूरत पड़ी?
स्त्री वेद कैसा
अभी अपर्याप्त में क्यों आ रहा है? उसका नया जो जन्म लिया उसमें क्यों आया स्त्री वेद, ऐसा उनका प्रश्न है। वहाँ तभी तो अपर्याप्त कहला गया ना, बिना जन्म ले लिया उसको अपर्याप्त क्यों कहेंगे? पहली पर्याय छूट गई उसकी, पहला जो कोई वेद है उसको छूट गया है। हाँ, अब जहाँ वो जन्म ले रहा है वहाँ उसके तीनों वेद में से कोई भी वेद हो सकता है, क्योंकि तीनों ही वेदों का उदय न हुए तक होता है ना। और समय दृष्टि मरकर जाएगा तो उसके पुरुष वेद होगा। ये समय दृष्टि के लिए नियम है, चौथे से आगे के लिए। नीचे के गुणस्थान में पहले दूसरे में मरने वाले किसी भी वेद में उत्पन्न हो सकते हैं। देखो देवी में, सौदर्म ईशान की देवी में कोई उत्पन्न हो सकता है ना, शासाधन के साथ हो सकता है। विग्रह गति में ही होता है वो। कारमान शरीर नाम कर्म का उदय हर समय चलता है, यानी हम हर समय कर्म ग्रहण कर रहे कि नहीं कर रहे।
तो वो उसमें कारमान शरीर नाम कर्म,
हाँ उसका उदय है। तेजस शरीर नाम कर्म के उदय से तेजस परमाणु ले रहे हैं, और हमारे औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय तो औदारिक जाति के परमाणु ले रहे हैं।
और काय योग अलग है शरीर,
हाँ वो काय योग अलग है, क्योंकि हमारा भले वो परमाणु ले रहे पर तो काय योग मनोयोग वचन योग वो पलटते रहता है।
औदारिक शरीर नाम कर्म या वैदिक शरीर नाम कर्म का उदय चालू हो जाएगा?
नहीं
नहीं होगा ना,
शरीर नाम कर्म का उदय है। प्रत्येक शरीर साधारण शरीर है, वो जब भव ग्रहण करना है शरीर धारण करना है उसके पहले समय से शुरू होता है। नाम कर्म के उदय स्थान हमने देखे थे, विग्रह गति में तो 20 काली आते होते हैं, और वहाँ जाने पर फिर शरीर नाम कर्म का उदय चालू होता है ना। अलग अलग वो संस्थान का होता है। नहीं नहीं, पहले समय, पहले समय, क्योंकि उसके बिना शरीर के परमाणु ग्रहण ही नहीं होगा। शरीर पर्याप्ति तो पहले आहार पर्याप्ति पूरी होगी, बाद में शरीर,
हाँ
वो पहले समय से चालू होता है। हाँ, क्योंकि परमाणु जो ग्रहण किए हैं उनको परिणमाने की शक्ति उत्पन्न होती है। नाम कर्म के उदय के स्थान जरा थोड़ा इमेजिन करो, ये तो यानी कौन सी गति थी, कौन सी आयु थी, उसका तो सारा उदय चालू हो गया था। अभी अकेले नाम कर्म के उदय में 20 प्रकृतियों का उदय चालू था।
उदय चालू कब होगा? विग्रह गति में चालू
होगा। हाँ, वो तो 20 का उदय था, यानी कोई बेसिक ऐसी प्रकृति उनका उदय तो हर समय चलेगा ही। कुछ तो होती है ध्रुवोदय, तेजस कारमाण वगैरह, उसका तो ध्रुवोदय है। हाँ, बंदी नहीं, उदय,
उदय
ध्रुवोदय कहते हैं। परंतु गति में क्या ऑप्शनल है, कोई ना कोई गति का उदय डेफिनेटली है, परंतु वो तो भले जो नरक में जाने वाले नरक गति का उदय होगा, वो तो विग्रह गति से ही चालू हो जाता है। गति का है, गत्यानुपूर्वी का है वो, हाँ। परंतु संस्थान नाम कर्म का उदय वहां पहुंचने पर, शरीर नाम कर्म का उदय वहां पहुंचने पर। यानी त्रस बादर पर्याप्त का उदय होगा, प्रत्येक शरीर का उदय वहां जाने पर होगा, ऐसे कुछ उसके नियम है। हाँ देखो, कभी हम पढ़ रहे थे तीन योग की बात पढ़े थे, तीनों वेद देखो वो ऐसा है नहीं, वहाँ एकेंद्र में अपर्याप्त अवस्था नहीं, वहाँ मारणांतिक कर सकता है, ये हमने देखा था, हमने देखा था ना देवों की आलाप देखे थे तो सासादन के साथ तो उन्होंने मारणांतिक किया, तभी उसकी उतने एरिया स्पर्शन की घटित की हमने, सीरियस मनुष्य भी जा सकते वहाँ पर, ये सासादन में थे तब मारणांतिक किया, और मारणांतिक के काल में ही उनका नहीं, मारणांतिक के काल में वो मिथ्यात में आ गए, मरण उनका मिथ्यात में जाकर होगा,
तो एरिया
हाँ, इसलिए एकेंद्री के अपर्याप्त में सासादन नहीं होगा, उसको वो देव की पर्याय है जो सासादन हो रही है, या मनुष्य तीरंची की पर्याय है जो एकेंद्री में मारणांतिक कर रहे हैं, परंतु मारणांतिक के काल में उनका मिथ्या तो हो जाएगा, या मारणांतिक करके वो मिथ्या तो में आए ये फिर मरण होगा, ये नियम है। सासादन सम्मेदिष्टों के अपर्याप्त वेद परें, तीन वेद चारों कषाय, विभंग ज्ञान के बिना दो अज्ञान, विभंग ज्ञान के बिना क्यों कहा, अपर्याप्त है ना, पर्याप्तों में तो विभंग ज्ञान भी था, क्योंकि जो नारकी है औपशमिक समय को से सासादन में आए तो उनको विभंग ज्ञान तो है ही वहां पर, असंयम जो चौथे तक असंयम होता है, चक्षुर अचक्षु दो दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल रेशा, विग्रह गति में शुक्ल रेशा, क्योंकि हमने देखा कार्मण और तेजस का विसरसोक्ष है वो शुक्ल वर्ण वाला है, और वहां जो अपर्याप्त अवस्था है मिश्र अवस्था वहां कपोत लेशा है, भाव से छह लेशाएं, देखो यहाँ से जीव मरकर जाता है तो कार्मान शरीर है उसके साथ और तेजस शरीर है, उसमें भले पांचों वर्ण के परमाणु है परंतु एक एक परमाणु के साथ जीव राशि से अनंतानंत गुणे विसरसोक्ष परमाणु है, और ये जो विसरसोक्ष है वो शुक्ल वर्ण का है, इसलिए वहाँ जीव का शरीर का वर्ण द्रव्य लेशा उसकी शुक्ल कहेंगे, और अपर्याप्त अवस्था में सभी जीवों के कपोत लेशा द्रव्य से हो, भाव से तो छो लेशा है, क्योंकि हमने देखा था ना मिथ्या दृष्टि और सॉरी मिथ्या दृष्टि और सासादन वाले मनुष्य तीरेंच में जन्म लेते हैं तो तीन अशुभ लेशा में ही जन्म लेते हैं, एक बात नारकी में तो जाने वाले अपने अपने अशुभ लेशा होती है, अभी सासादन में तो कोई जाता नहीं है तो उसकी बात भी छोड़ दो, अब सासादन के साथ देव में गए भवनत्रिक में तो तीन अशुभ है और ऊपर जाने वाले के तीन शुभ भी होगी, इसलिए छह लेशा घटित होती है, भव्य सिद्धिक है क्योंकि अभी सम्यक से छूट कर आए हैं, सासादन सम्यक उनके वो संगी है, आहारक और अनाहारक दोनों है, विग्रह गति में अनाहारक है मिश्र अवस्था में आहारक है, इसलिए दोनों घटित होते साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं।
क्या ये उपयोग चालू हो सकता है, साकार उपयोग चालू नहीं होगा, जो संस्कार रूप चल रहा है वही होगा ना,
यानी उपयोग का पलटना आप कह रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पे माध्यम भी नहीं है ना, कोई
माध्यम से थोड़ा ही होता है वो, ऐसा बोले तो आप अपर्याप्त अवस्था में क्या माध्यम है यानी अन्य अन्य जीवों की भी बात है, अभी वो पलटता है क्या कैसे पलटता है मैं नहीं कह सकूंगी आपको, आगे कहीं अन्य आलोप में उनका प्रश्न है उपयोग का पलटना होता है क्या, दर्शन उपयोग से ज्ञान उपयोग और ज्ञान उपयोग से दर्शन उपयोग,
कोई साकार उपयोग या अनाकार उपयोग चालू हो सकता है ये तीन समय में, हाँ विग्रह गति में,
इन्हें एक जीव की अपेक्षा उपयोग का पलटना होता है कि उनका ही कहना, यही कहना हाँ। है ना आपको? मैं अपने से कुछ नहीं कहना चाहती है, नाना जीव की अपेक्षा अन्य अन्य उपयोग तो होगी ही होंगे विग्रह गति में, कोई ना कोई उपयोग तो होगा ना, ये पलटना होता है कि ना, ये हम वही प्रश्न का मैं तो उत्तर नहीं दे सकूंगी, क्योंकि ज्ञान उपयोग पलट कर दर्शन उपयोग हो सकता है ना, तो होने में क्या हर्ज है?
दर्शन उपयोग से ज्ञान उपयोग हो सकता है पर
क्यों?
क्योंकि दर्शन
ये देखो साकार उपयोग में था, वो सम सासाधन में आया, सासाधन में आया तो एक समय सासाधन रहा,
जितना काल रहना उतना हाँ।
वो जो असंख्यात में से एक समय रह गया, फिर दर्शन उपयोग हो गया,
साधन में हो सकता है, अपर्याप्त कारमान का योग में हो सकता है कि नहीं, विग्रह गति में हो सकता है कि नहीं, उनका प्रश्न।
विग्रह गति की बात कर रहे हैं,
विग्रह गति में या वहाँ अपर्याप्त अवस्था में, दोनों है तो जीव पलटना तो होगा। हाँ देखो साकार उपयोगी अनाकार उपयोगी, ये टेबल तो हमने देख लिया नीचे का हा? अभी 432 पेज पर आ गए, अब तीसरे गुणस्थान की बात करेंगे हम, अभी वो देखने के पहले हम नक्की करेंगे गुणस्थान तो तीसरा है, कौन कौन से जीव समासों में होगा ये तीसरा गुणस्थान?
संगी पर्याप्त,
हाँ संगी पर्याप्त में, क्योंकि इनमें मरण नहीं होता तो अपर्याप्त अवस्था होगी नहीं, तो एक ही संगी पर्याप्त एक ही जीव समास है उसका, कहेंगे हम सामान्य कुछ भी सामान्य में पर्याप्त ही होता है उसमें, तो गुणस्थान जीव समास पर्याप्ति छह पर्याप्ति, फिर प्राण दस प्राण पर्याप्ति प्राण संज्ञा चारो हाँ हो गया ना, अभी गति इंद्रिया भी चालू करना है ना हाँ। चारों गतियों में इंद्रिया तो पंच इंद्रिय हाँ। गति इंद्रिया काय त्रस काय योग और आहार को भी छोड़ दो हाँ हाँ दस हो गए वेद तीनों वेद वालों के योग वेद कषाय चारों ज्ञान मिश्र तीन तीन मिश्र कहेंगे ज्ञान संयम असंयम दर्शन चक्षु अवलेशा छोलेशा द्रव्य से भी प्रभाव से भी छोलेशा लेशा भव्य सम्यक मिश्र यानी वो सम्यक मिथ्या तो हो गए सम्यक संगी आहार के अनाहार दोनों को ऐसे आहार आहार और उपयोग दोनों। देखो अभी कितना आसान है, अभी यहाँ से फटाफट गाड़ी चलेगी, देखो हम पढ़ेंगे यहाँ पर एक तीसरा गुणस्थान पहली लाइन से एक संगी पर्याप्त जीव समास छह पर्याप्तियां दशो प्राण चारों संज्ञाएं चारों गतियां पंचेंद्रिय जाति त्रस काय आहार द्विक और अपर्याप्त संबंधी तीन योगों के बिना दस योग यानी मन के चार वचन के चार एक औदारिक और एक वैकृत काय तीनों वेद चारों कषाय ज्ञान में अज्ञान मिश्रित आदि के तीनों ज्ञान यानी मति श्रुत और अवधि उसके अज्ञान से मिश्रित उसको सम्यक मिथ्या मति ज्ञान है सभी कहते हैं। हाँ कहाँ तक आए? ज्ञान तक। असंयम, चक्षुर अचक्षु दो दर्शन। देखो यहाँ पर भी अवधि दर्शन स्वीकार नहीं किया मिश्र के पहले। द्रव्य और भाव रूप छह लेशाएं, भव्य सिद्धि, समय मिथ्यात्व, समय को मारना की अपेक्षा। संगी ही है ये, आहारक है, साकार और अनाकार उपयोगी होते हैं। यह विशेष लिख दिया उन्होंने, मिश्र गुणस्थान वाले जीव पर्याप्त ही होते हैं, इसलिए मिश्र गुणस्थान के उक्त सामान्य आलाप ही पर्याप्त के समझना चाहिए। सामान्य को उसी को पर्याप्त को एक ही बात है। अब चौथे गुणस्थान की बात चलेगी। असंयत समय दृष्टि जीवों के ओघालाप कहने पर, अब हम देखते हैं उनका गुणस्थान कौन सा है, चौथा गुणस्थान। और जीव समाज हाँ, ये चौथे के साथ मरकर जाता है ना अन्य भाव में, अपर्याप्त भी आ गए उसके। पर्याप्ति दोनों गिनने पड़ गए, छह पर्याप्ति छह अपर्याप्ति, प्राण दस और सात, संज्ञा चार, गतिया सम्यक, सम्यक तो कौन कौन से गति में होता है, चारों गति में। इंद्रिया एक पंचेंद्रिय, काय रस काय, अभी योग आहार द्विक नहीं होगा, बाकी मिश्र का योग भी होगा, कारमान भी होगा, तेरह हो गया योग। वेद तीनों वेद वालों का सम्यक तो होता है, कषाय चारों, ज्ञान मति सुता अवधि, फिर संयम, असंयम है ना क्योंकि चौथे तक असंयम है, लेशा छो है ना, नारकी भी है ना चौथे गुणस्थान वाले। और नारकी की बात छोड़ो, मनुष्यों में छो लेशाओं का एक एक अंतर्मूर्त में नियम से पलटना होता है। समय दृष्टि के अक्षायिक भी हो तो भी वो सर्वा सिद्धि से आया है तेतीस सागर शुक्ल लेशा वाला, या आते ही शुक्ल में था, फिर पद्म हुआ, फिर पित हुआ, फिर कपोत, फिर नील और कृष्ण, पहुंच ही जाता है एक अंतर्मूर्त में। उसको गिनना है तो पांच अंतर्मूर्त का हो। हाँ दर्शन हमने नहीं कहा था ना बीच में, चक्ष चक्ष अवधि दर्शन। लेशा में द्रव्य से भी छो, भाव से भी छो, ये भव्य ही है। अब सम्यक के प्रकार कौन से हो गए, औक्षमिक औक्षमिक और क्षायिक। संगी है, आहारक या अनाहारक दोनों, विग्रह गति में भी है और उपयोग भी दोनों। अब यहाँ पढ़ेंगे देखो, कहाँ पर हो सकता है, नहीं नहीं, परंतु अभी हमने जो लेशा का अंतर गिनते हैं ना, उत्कृष्ट अंतर में तो और बढ़ाना चाहिए, तो उसमें पांच अंतर मूर्त में वो हो जाता है कृष्ण लेशा वाला। यानी जो वहां से आने वाला जीव पांच अंतर, आप यानी फिर दोबारा उसमें अशुभ में ही जाना चाहिए, जरूरी नहीं है। हाँ परंतु उसमें तो गिना है इसे, पांच अंतर्मूर्त में वो तो कृष्ण में पहुंच जाता है। यानी अंतर्मूर्त पूरा बड़ा हो या छोटा हो, वो तो केवल शुभ लेशा में ही नहीं हो रहे पलटेगा, यानी अशुभ में तो उसके आना ही होगा। पांचवें गुणस्थान में पहुंच गया तो शुभ लेशा में ही रहेगा, चौथे में जन्म लिया है तो उसके तो अच्छा इन जनरल हो सकता है, जैसे विशुद्धि है वापस फिर शुक्ल में जा सकता है। ना ना ना, पांचवे गुणस्थान के बाद, चौथे में तो छह लेशा होती है, पलटना चलता है उसका।
पांचवे में भी
तीन में पलटता है, सातवें तक आठवें से एक शुक्ल निश्चय रहते हैं। जो कभी हम यहाँ पढ़ेंगे देखो, द्रव्य से जो है वही काम रहेगी ना। द्रव्य से हम प्राणियों के हाथी है या नाग है या कोई घोड़ा है, तो उसके भी अलग अलग वर्ण है, नहीं तो सभी वर्ण के जीव तो पाए जाएंगे। दो छह लेशा बताई ना, एक चौथा गुण स्थान ये देखो असंयत सम्य दृष्टि के पर्याप्त उनके नहीं, हम सामान्य से देख रहे थे यहाँ पर पेज नंबर 432 पर लास्ट पैराग्राफ, एक चौथा गुण स्थान संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त दो जीव समास, छह पर्याप्तिया छह अपर्याप्तिया, दस प्राण सात प्राण, चारों संज्ञाएं चारों गतियां, पंचेंद्रिय जाति त्रस्काय, आहार के बिना तेरह योग, तीनों वेद चारों कषायें, तीन ज्ञान असंयम, केवल दर्शन के बिना तीन दर्शन, द्रव्य और भाव रूप छह लेशाएं, बहुवे सिद्धिक औपशमिक शायिक और क्षयोपशमिक, ये तीन सम्यक्त्व। ये हमने सब देखे ना अभी, संगीत आहारक अनाहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब असंयत सम्य दृष्टि पर्याप्त जीवों के उघाल आप कहने पर,
द्रव्यलिंगी मुनि है
चौथे गुण स्थान वाले,
उसको भी छह लेशा वो नियम से कृष्ण तक जाएगा ही के ऐसा नियम,
वो भी जाएगा क्योंकि मिथ्या दृष्टि है वो,
नहीं ये चौथे गुण स्थान की बात कर रहा हूँ,
चौथे गुण स्थान वाला।
हाँ
भले चौथे गुण स्थान में छह लेशा है ना,
नहीं वो तो है पर वो द्रव्यलिंगी
तो क्या हुआ, यानी बाह्य आचार पालने से उसके लेशा बदलेगी ऐसा नहीं है। हाँ पंचम गुण स्थान से उसके शुभ लेशा होगी, यानी उस गुण स्थान के योगी जो कषाय के उदय स्थान जो कितने संकलेश वगैरह परिणाम तो होगी वहां पर। देखो यहाँ संकलेश की अपेक्षा उसका भी ले लेना, कषायों के उदय स्थान जो उस गुण स्थान में हो सकते हैं। अभी हम जो ये शलाका पुरुषों की भी बात बताते हैं, ये रामचंद्र जी है तो जो शोक करते थे श्री सीता के विलाप में या भाई के विलाप जो कुछ हो रहा था, तो उसमें हम कह सकते हैं अभी वो भी कितना उसका अंतर्मूर्त काल होता है, थ्रू आउट वो कृष्ण लेशा में नहीं पड़े रहते। कोई भी जीव जो हमारी जो लेशा है पलटती है, यहाँ पर भी लेशा का वर्णन होता है, ऐसा क्रोधी है या आलसू है ऐसा है वैसा है, तो हम किसी को वो लेबल लगाते हैं कृष्ण लेशा वाला है, अरे उसके भी लेशा है पलटती है हर अंतर में, और वो लेशा का काल भी बहुत छोटा काल है। यथा योग्य कहेंगे हम वहां पर, क्योंकि बीच बीच में ऐसी हो सकती है ऐसा, हम कहते हैं अभी विचारों में अभी बाहर कुछ क्रिया रूप में न भी देखो आप उसको, उसको विचारों में देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। हाँ देखो एक चौथा और पर्याप्त जीवों के देखेंगे अभी हम, तो एक चौथा गुण स्थान संगी पर्याप्त एक ही जीव समास, छहों पर्याप्तियां दसों प्राण, चारों संज्ञाएं चारों गतियां, पंचेंद्रिय जाति त्रस काय। देखो बाकी ये तो बातें समझ, केवल वो पर्याप्तियों में हमने केवल छह कहे, छह छह नहीं कहे, और जीव समास में डिफरेंस आया, अब योग में डिफरेंस होगा। त्रस्काय तो देखा थे हमने, आहार द्विक और अपर्याप्त संबंधी तीन योगों के बिना दस योग। वहां सामान्य आलोप में तो हमने वैकृत मिश्र भी लिया था, उदारिक मिश्र भी लिया, कारमान भी लिया था, अब तीनों वेद वाले हैं, कषाय चारों हो गए, तीन ज्ञान मति श्रुति और अवधि, इसको ज्ञान कहेंगे, ज्ञान का तो समय ज्ञान, तीन ज्ञान हो गए, असंयम संयम की अपेक्षा और संयम। फिर दर्शन कौन कौन से है? चक्षु चक्षु और अवधि दर्शन, लेशा छ छ भव्य ही है, और सम्यक तो भी तीनों प्रकार के हो गए, संगी है, आहारक है और साकार अनाकार उपयोगी है। अब हमको अपर्याप्तों के अलाप देखने हैं, अभी बिना देखे हम बैल में देखेंगे। चौथा गुणस्थान वाला है अपर्याप्त जीव है, गुणस्थान तो उन्होंने बता दिया। हाँ, जीव समास संज्ञा अपर्याप्त, पर्याप्ति छ अपर्याप्ति और प्राण सात, बहुत अच्छा। संज्ञा चारो, गतिया चारो गति में उत्पन्न होते ना, सम्यक्त्व के साथ मरकर, क्योंकि तिर्यंच में भी शायिक उत्पन्न होता है। तो यहाँ तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं, किसी गति की विशेष बात करेंगे तो बाद में, अभी नहीं, उसके आलाप बाद में आएंगे, जब तिर्यंचों के भेदों में जाएंगे तब उसकी चर्चा होगी। यहाँ तो इन जनरल सबकी बात कर रही है। कहाँ तक आए हम? गति, गति इंद्रिय पंचेंद्रिय काय तिरस्कार योग, अभी बताओ
योग
हाँ। देखो पहले में पहले जाते हैं समय सोचना, विग्रह गति जा रहा है, कारमान है, देव में गया है तो वैकरिक मिश्र है, मनुष्य तिरंज में औदारिक मिश्र है, तीन मिश्र, यानी दो मिश्र और एक कारमान, तीन हो गए, योग वेद। नपुसक वेद होगा नरक में जाने वाले, और बाकी तो अपर्याप्त में तो पुरुष वेद होगा, पुरुष और नपुसक वेद दो ही वेद होगा, स्त्री वेद नहीं होगा, क्योंकि स्त्री वेद में जन्म नहीं होगा उसका। अभी क्या है? कषाय ना, कषाय चारो, ज्ञान वंती शुद्ध अवधि हो सकते हैं ना, तीर्थंकर आते हैं ना, तो अवधि ज्ञान से किसी का फॉलो होता है, जिसको कहते हैं अनुगामी, अन्य भोग में साथ जाता है, उसको अनुगामी कहेंगे, वो हो सकता है उनका। संयम असंयम, दर्शन तीन ज्ञान लिए, तीन दर्शन यहाँ पर भी होते हैं। अब लेशा बताने आपको, द्रव्य से पहले बताओ, कब इतनी मेहनत की ना, हाँ शुक्ल और कापूर, अब भाव से आपको घटित करना है, कैसे?
नारकी में तीन असुर,
कैसे?
तीन
भूत, सम्यक के साथ नरक जाने वाले की कापोत लेशा हो गई, सम्यक के साथ भू भूमि में जाने वाले की कापोत होगी, सम्यक के साथ देव में से आने वाले के पित्त पद्म शुक्ल होगी, पित पद्म शुक्ल में होंगे। अभी आपको तीन अशुभ घट, वो अभी अभी घटित करो ना, कृष्ण नील को आपको मालूम है। देखो देखो, जो नार की समय दृष्टि है, छठे नरक का समय दृष्टि कृष्ण नील कृष्ण लेशा में मर रहा है, वो कृष्ण लेशा में मनुष्य में उत्पन्न होगा, उसकी लेशा वही रहेगी अंतर्मुख तक, और जो नील में मरेगी वो कापूत की भी वही है, पर अन्यत्र भी कापूत हो सकता है, इसलिए यानी नारकी सम्यक तो सही, कोई कापूत में मरता है, कोई नील में, कोई कृष्ण में, उसी लेशा के साथ मनुष्य में आया है, इसलिए सम्यक दृष्टि की अपर्याप्त अवस्था में भी छह लेशा होगी, ख्याल में ना, यहाँ मरकर वो तो देव में जाने वाले की कोई अशुभ लेशा नहीं पाई जाएगी, तो वो कहाँ होती हमको नक्की करना है, इसलिए छह लेशा के भाव से चहो होती है, भव्य है ही, सम्यक तो कौन कौन से हो गए आप बताए, द्वितीय ऑप्शन होगा ना, तीन हो गए यार, प्रथम ऑप्शन द्वितीय ऑप्शन भेद नहीं कर रहे, पर द्वितीय ऑप्शन है तो तीनों तीनों सम्यक है, शायद तो होते ही, हाँ संगी है, आहारक दोनों होंगे, विग्रह से अनाहारक, मिश्र में आहारक, और उपयोग भी दोनों होंगे। देखो यहाँ से पढ़ लेते फिर, हाँ कहाँ गया ये पेज नंबर 434 पेज पर, वहां से पढ़ लेते फिर अपना दोबारा पक्का होगा। एक चौथा गुण स्थान, एक संगी अपर्याप्त जीव समास, छह अपर्याप्तिया, मनोबल वचन बल और आनापान के बिना यानी श्वासोश्वास के बिना सात प्राण क्या नहीं है वो बता रहे। चारों संज्ञाएं, चारों गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, औदारिक मिश्र, वैकरिक मिश्र, कारमाण, ये तीन योग, क्योंकि यहाँ मनोयोग नहीं हो गए अपर्याप्त के, वचन योग नहीं हो गए, और काय योग और वैकरिक काय योग और औदारिक काय योग तो शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर होगी, यहाँ अपर्याप्तों के अलाप है। और यहाँ जो अपर्याप्त कह रहे हैं वो निर्वृत्ति अपर्याप्त चौथे गुण स्थान में। तीन योग, स्त्री वेद के बिना दो वेद, क्योंकि स्त्री में कोई उत्पन्न नहीं होते। अब नपुसक वेद भी नरक में जाने वाले की अपेक्षा लेना है, अदरवाइज नहीं। चारों कषाय, मतिशुतर अवधि तीन ज्ञान, असंयम, चक्षु अचक्षु और अवधि तीन दर्शन, वो अचक्षु किया है करेक्शन, अचक्ष हुआ अचक्षु, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशा, भाव से छो लेशा, वो कैसे हमने अभिघटित की। छो लेशा होने का यह कारण है कि नरक गति से आकर मनुष्यों में उत्पन्न होने वाले असंयत सम्य दृष्टि जीवों के अपर्याप्त काल में कृष्ण, नील और कापोत ये तीन लेशाएं पाई जाती है, यानी जो जिस नरक से आया है उसको उसी लेशा के साथ यहाँ मनुष्य में आ जाएगा, और मनुष्यों में ही आएगा, तीरियंश में तो कोई नहीं जाएगा, सम्यक दृष्टि है ना। लेशाओं के आगे भव्य सिद्धि, फिर तीनों सम्यक तो होते हैं, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि अथवा सादि मिथ्या दृष्टि जीव चारों ही गतियों में उपशम सम्यक्त को ग्रहण करके पाए जाते हैं, परंतु मरण को प्राप्त नहीं होते। शंका पूछ रहे हैं, यह कैसे जाना जाता है कि उपशम सम्यक दृष्टि जीव सम्यज्ञ हुआ है, मरण नहीं करते। कहाँ गया मेरा, सम्यक चाहिए वो आधा गो चाहिए, वो ये आया बीच में। समाधान, आचार्यों के वचन से और सूत्र व्याख्यान से जाना जाता है कि उपशम समय दृष्टि जीव नहीं मरते हैं, किंतु चारित्र मोह के उपशम करने वाले जीव मरते हैं, यानी द्वितीय उपशम वाले, और देवों में उत्पन्न होते हैं, अतः उनकी अपेक्षा अपर्याप्त काल में उपशम सम्यक को पाया जाता है, जिसको हम द्वितीय उपशम कहते हैं। वेदक सम्यक तो देव और मनुष्यों के अपर्याप्त काल में पाया ही जाता है। क्या कहते हैं, मनुष्य मरकर वेदक सम्यक के साथ देव में उत्पन्न हो सकता है, पर मनुष्य सम्यक दृष्टि यदि भोगभूमि में जाना है तीर्यंश में, तो उसको क्षायिक के साथ या कृतकृत्य वेदक में जाना पड़ेगा, ऐसे मनुष्य में, और ऐसे नरक में। कृतकृत्य वेदक यानी वो अभी क्षायिक होने के लिए छोटा ही काल बाकी है, अभी वो नियम से क्षायिक होने वाला है, उसकी एक सम्यक प्रकृति बाकी है जो अंतर्मूर्त प्रमाण निशे कभी छिरेगी, उस काल में उसका मरण हो सकता है।
तो अभी तक क्षायिक नहीं हुआ,
हाँ क्षायिक होने वाला है, यानी उसने मिथ्यात्व का क्षय कर दिया है, सम्यक मिथ्यात्व का कर दिया है, सम्यक प्रकृति के निशे कभी फिरने बाकी है कुछ, अभी थोड़े से समय में वो होने वाला है, उस अवस्था में मरण हो सकता है।
अपर्याप्त
के साथ उसमें बोलना,
भोग भूमि में जो कृतकृत्य वेदक होने जा रहा है और यहाँ पे मरण
कृतकृत्य हुआ है, होने नहीं जा रहा,
हुआ है,
शायिक हो जाएगा,
पर वो वहाँ पे उसके अपर्याप्त दशा में उसका शायिक लेना है के वेदक समेत भी ले,
दोनों ले सकते हैं। अभी वो उसके कितने निषेक बाकी है, हो सकता है कि विग्रह गति में वो वेदक से क्षायिक हो जाएगा, जितने निषेक खिरना बाकी है वो खिरेंगे तो वो क्षायिक हो जाएगा, हो सकता है वहाँ तो निवृत्ति अपर्याप्त काल में वो क्षायिक हो जाता है,
तो फिर वो यहाँ पे ही घटित होगा ना, जो
भोग भूमि के लिए और नरक के लिए। देव में भी घटित होता है ऐसा, कृतकृत्य वेदक मरकर चारों गति में उत्पन्न हो सकता
है।
हाँ, वो सब चारों ही गति में होता है, चारों गति में हो सकता है। कितना उसका काल बाकी है ना, सम्यक प्रकृति खिल रही है, उसके जितने समय बाकी है उतने समयों में वो क्षायिक हो जाता है।
और वहाँ पे पहले समय के क्षायिक समय गति में चालू रहता है,
चालू ही रहेगा उसको। अभी क्षायिक हुआ तो अभी फिर उसको कुछ गिरने का सवाल नहीं है। देखो यहाँ क्या कहते हैं,
हाँ, प्रकृति का खत्म होने का कारण
अंतर्मूर्त है, वो अंतर्मूर्त में से हो सकता है दस समय बाकी है और उसका मरण हुआ, ये भी हो सकता है ना। कृतकृत्य के कितने काल में कहा मरण हुआ, शुरुआत में मरने वाले तो, क्योंकि उसके भी चार भाग थे, शुरुआत में मरने वाले देव में जाएंगे, दूसरे भाग में मरने वाले देव या मनुष्य में जाएंगे, तीसरे भाग में देव मनुष्य तीन इंच में जाएंगे जहाँ जिसकी आयु पूरी होती है, चौथे भाग में मरने वाले चारों गतियों में कहीं पर भी जा सकते हैं। क्योंकि एकदम से अभी सासाधन में आते ही, सॉरी सासाधन की बात नहीं, कृतकृत्य में आते ही उसकी विशुद्धि बहुत थी, तो उतनी विशुद्धि में मरने वाला एकदम पहले भाग में मरने वाला नरक में नहीं जाएगा, वो तो ऑटोमेटिक वैसी व्यवस्था है उसकी।
जिसने क्षपणा चालू की है कर्मों की,
हाँ,
उसके जब तक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व खत्म नहीं होते
तब तक उसका
मरण नहीं होता,
नहीं होता। और उसके बाद भी शुरुआत में दोनों खत्म हुए तो सम्यक प्रकृति की सत्ता कितने 8 वर्ष की बाकी है, उसमें भी बहुत सारे कांडक घात होते 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 अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त के, फिर लास्ट जो उसके अनिवृत्तिकरण समाप्त हुआ तो उसको कृतकृत्य वेदक कहेंगे, फिर उसका मरण हो सकता है। तीन करण वहां पूर्ण होते हैं। देखो यहाँ क्या, यहाँ वही बात चल रही थी, सम्य दृष्टि असंयत सम्य दृष्टि के अपर्याप्त काल में जो तीनों प्रकार के सम्यक तो बताए हैं, वहां जो औपशमिक बताए वो द्वितीय औपशम की अपेक्षा बताए। हम 434 पेज पर नीचे का पैराग्राफ तीन लाइन पढ़ी हमने, वेदक सम्यक्त तो देव और मनुष्यों के अपर्याप्त काल में पाया ही जाता है। देखो क्योंकि वेदक सम्यक्त के साथ मनुष्य में आने वाले कहां कहां से आएंगे, देव से मरकर मनुष्य में आने वाले भी वेदक सम्यक्त के साथ आ सकते हैं, नारकी मरकर भी मनुष्य में आएंगे तो वेदक सम्यक्त के साथ आ जाए, परंतु यहाँ से वेदक सम्यक्त लेकर कोई उसमें विदेह क्षेत्र में नहीं जाने वाला है, जाएगा सम्यक्त के साथ देह में जाएगा। भोग भूमि और नरक में जाने के लिए कंडीशन है उसके कृतकृत्य वेदक की या क्षायिक की। देखो यहाँ आगे देखते हैं, देखो वेदक सम्यक्त तो देव और मनुष्यों के अपर्याप्त काल में पाया ही जाता है, क्योंकि वेदक सम्यक्त के साथ मरण को प्राप्त हुए देव और मनुष्यों के परस्पर गमनागमन में कोई विरोध नहीं। यानी वेदक सम्यक्त के साथ मरण, मनुष्य मरकर देव और देव मरकर मनुष्य, ये तो होता है, नारकी भी मनुष्य में आते हैं। कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा तो वेदक सम्यक्त तिर्यंच और नारकी जीवों के अपर्याप्त काल में भी पाया जाता है, ये कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा लगाए, ऑर्डिनरी वेदक नहीं। यानी कोई यहाँ साधा अपना सम्यक को लेकर वेदक सम्यक को लेकर तीर्यंश में चला जाए, कोई नारकी तीर्यंश में पैदा हो जाए वेदक सम्यक्त के साथ, ऐसा नहीं होता। क्षायिक सम्यक्त भी सम्यक दर्शन के पहले बांधी गई आयु के बंध की अपेक्षा से चारों ही गतियों के अपर्याप्त काल में पाया जाता है, इसलिए असंयत सम्य दृष्टि जीव के अपर्याप्त काल में तीनों ही सम्यक तो होते हैं। ये कितना स्पष्ट बता दिया है ना, कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा, यानी जो नरक में जाने वाला है वो तो कृतकृत्य वेदक में जाएगा सम्यक के साथ, या क्षायिक होकर फिर चला जाएगा, क्योंकि उसने पहले सम्यक तो होने के पहले वो आयु बांधी है। सम्यक दर्शन होने के बाद कोई मनुष्य आयु बांधता है तो नियम से देवायु बांधेगा। आगे बढ़ते हैं, देखो ये अपर्याप्त आलाप ये नंबर 12 वाली टेबल में दिया है 435 पेज पर। अभी हमने जो जो सारी बातें पढ़ी ना वही है इसमें। वेदों में केवल वो स्त्री बिना दो वेद यहाँ लेना है, चौथे गुण स्थान की अपर्याप्त है। अभी 435 पेज पर पढ़ेंगे हम सम्यक्त्व के आगे, यानी सम्यक्त्व तीनों प्रकार के देखे थे हमने, वो संगी है, आहारक अनाहारक दोनों है क्योंकि अपर्याप्तों का आलाप है, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी दोनों ही होते हैं। अब संयता संयत जीवों के ओ आलाप कहने पर तो मेरा प्रश्न है, संयता संयत में पर्याप्त लेना कि अपर्याप्त लेना?
पर्याप्त
लेना, क्योंकि उसमें मरण तो होता है परंतु इमीडिएटली उसका नेक्स्ट समय में गुणस्थान चौथा हो जाता है विग्रह गति से। तो संयता संयत जीवों के उघा लाभ कहने पर देखो एक पांचवा गुणस्थान है जीव समाज
पर्याप्त
संगी पर्याप्त पर्याप्ति छह पर्याप्तिया हाँ दस प्राण संज्ञा
चारों
संज्ञा फिर गति मनुष्य दो गतिया और जाति पंचमी जाति त्रस्काय। हाँ अब आपको योग गिनाना है
चार मन चार वचन औदारिक
और वैक्रिक
नहीं
औदारिक तो कितने हो गए नौ हो गए। हाँ चार मन योग चार वचन औदारिक का योग नौ योग। हाँ कौन से वेद वालों के होगा पांचवें स्थान
तीनों
वेद चारों कषाय हैं ज्ञान मति श्रुति अवधि तीनों। अभी संयम कौन सा है यहाँ पर संयम असंयम और दर्शन तीनों अभिलेषा द्रव्य की और भाव की द्रव्य से छह भाव की तीन क्योंकि अभी तीन ही शुभ लेषाओं में उसका
पलटना
होगा संक्रमण होगा। आगे देखते हैं देखो यहाँ ये हम पढ़ लेते संयता संयत जीवों के उघा लाभ कहने पर एक पांचवा गुणस्थान एक संगी पर्याप्त जीव समास छह पर्याप्तियां दशो प्राण चारों संज्ञाएं तीरियन चार मनुष्य ये दो गतियां पंचेंद्रीय जाति त्रस्काय चार मनोयोग चार वचन योग औदारिक काय योग ये नौ योग तीनों वेद चारों कषायें आदि के तीन ज्ञान संयमा संयम आदि के तीन दर्शन द्रव्य की अपेक्षा छह लेशाएं भाव की अपेक्षा तेज पद्म और शुक्ल लेशाएं होती है। कितने ही आचार्य शरीर रचना के लिए आए हुए परमाणुओं के वर्ण को लेकर संहिता संहिता आदि गुणस्थानवर्ती जीवों को भाव लेशा का वर्णन करते हैं किंतु यह उनका कथन घटित नहीं होता क्योंकि वैसा मानने पर द्रव्य और भाव लेशा में फिर कोई भेद ही नहीं रहता और जो लिंपन करती उसे लेशा कहते हैं। इस आगम वचन का व्याघात भी होता है व्याघात यानी उसका नाश हो जाता है। इसलिए कर्मलेप का कारण होने से योग और कषाय से अनुरंजित प्रवृत्ति ही भावलेशा है ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए यानी वहाँ तीन शुभ लेशा ही होती है भले द्रव्य से छह वर्ण वाले हो गए फिर भी भाव से तीन शुभ ही होती है। ये टेबल नंबर 13 पर अभी जो हमने पढ़ा वही बात है तो लेशा के आगे हम पढ़ते हैं। हाँ आपका
कृष्ण लेशा वाला मनुष्य जो 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कर रहा है
क्या क्या क्या
कृष्ण लेशा वाला मनुष्य मिथ्या दृष्टि जो 70
कोड़ा कोड़ी का बंद कर रहा है
और पीत लेशा वाला देव जो 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कर रहा है उसके भाव में फर्क होगा ना?
किस भाव में कौन से भाव में मिथ्यात्व का दोनों का समान है।
कषाय
भी उनकी भी अनुभाग वैसा ही होगा तीव्र हाँ उस परिणाम में वो एक ही जाति बांध रहे हैं और मनुष्य कृष्ण लेशा के तीव्र परिणाम में नरक गति बांध रहा है। लेशा के अनुसार पर देवों की वही लेशा है ना
नहीं बरे पर संकलेश जो
हाँ जो कषाय उनके उदय स्थान जो संकलेश कृष्ण लेशा वाले उदय स्थान वो अलग
वो वहाँ पे यहाँ पे नहीं होगी पिछले
परंतु उसका मिथ्यात्व में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा मिथ्यात्व उतना ही मिथ्यात्व तो बना रहे ना उनका, मिथ्यात्व के अनुभाग में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। देखो फर्क कितना है, केवल वो कृष्ण लेशा वाले की भी उत्कृष्ट से मध्यम और जघन्य बहुत सारे भेद है। उनका प्रश्न ऐसा है, कृष्ण लेशा वाला मनुष्य 70 कोड़ाकोड़ी का बंद कर रहा है, और कृष्ण पीत लेशा वाला देव वो भी 70 कोड़ाकोड़ी का बंद कर रहा है, तो उनमें कोई डिफरेंस होगा ना? डिफरेंस इतना हो सकता है, कृष्ण लेशा के भी उत्कृष्ट मध्यम वगैरह वगैरह जो परिणाम है ना, और जहाँ कृष्ण लेशा के मध्यम ऐसे परिणाम है कि वहाँ जहाँ पीत लेशा के भी हो सकते हैं, वो पीत लेशा का जगन्य कहलाएगा। देव उत्कृष्ट पीत लेशा में तो 70 कोड़ाकोड़ी का बंद नहीं करेंगे, उनके जब 70 कोड़ाकोड़ी का बंद हो रहा है उनकी जगन्य की ओर का लेशा हम कह लेंगे, पीत की जगन्य है। तो ऐसे कुछ कशाम के उदय स्थान है वहाँ कृष्ण के मध्यम है और पीत के जघन्य है, क्योंकि छह लेशा एक साथ हो सकती है वहां पर उस पर्टिकुलर शिला भेद में। पृथ्वी भेद में तो कृष्ण ही है, शिला भेद में कहीं अकेला कृष्ण है, फिर कृष्ण नील भी है, कृष्ण नील कपोत भी है, उसके अनुसार आयु का बंध भी होता है, हमने देखे थे। यानी छह लेशाओं में सभी आयु तो बन ही सकती, यानी ऐसा नहीं कि कृष्ण लेशा वाला देवायु नहीं बनता, ये भी नहीं है। लेशा के अनुसार कशाम के उदय स्थानों में कोई डिफरेंस होगा उनका? पीत की जगन्य हो सकती है, जब उनके अति तीव्र परिणाम है तो पीत का जगन्य होगा,
तो फर्क होगा।
फर्क तो डेफिनेटली है वैसे लेशा में, देखो पीत वाला मनुष्य अलग बात है और पीत वाला देव अलग बात है, इसमें तो डिफरेंस हो सकता है ना थोड़ा, परंतु उसके मिथ्यात्व में कोई डिफरेंस नहीं होगा।
तो ऐसा कहना है कि देव का जो राग है चारित्र होने का, वो मनुष्य में जो उत्कृष्ट है उससे कम है।
कम किस अपेक्षा से आप कह सकते हैं? उसकी प्रकृति अलग अलग बनती है, एक तो कौन से जीवों की कौन सी प्रकृति बन सकती है नहीं बन सकती उसके अनुसार भी हम कह सकते हैं। जैसे देव एक, अभी अब ऐसा सोचो, देव एक इंद्रिय का बंद करेंगे तो कितना सागर का कर सकते हैं एक इंद्रिय जाति का, बोलो। देव एक इंद्रिय जाति का उत्कृष्ट बंद कितना करेंगे?
20 कोड़ा कोड़ी का।
और मनुष्य तीरंच एक इंद्रिय का बंद करेंगे तो उत्कृष्ट कितना करेंगे? 18। क्योंकि मनुष्य जब उत्कृष्ट संक्लेश करते तो नरक गति बांधेंगे, वो एक इंद्रिय जाति क्यों बांधेंगे? मनुष्य तीरंच का जो मैक्सिमम जो कृष्ण लेशा वाला परिणाम है उसमें नरक गति बांधेगी। जब वो एक इंद्रिय जाति संबंधी बंद कर रहे हैं तो उनका थोड़ा मंद है, तो ऐसे परिणाम है कि वो 18 कोड़ाकोड़ी का ही बंद कर रहे हैं। अब नील लेशा वाला नारकी है, तो नील लेशा वाला नारकी वो तो तीरंच गति का बंद करेंगे, कितने वाला करेंगे? वो 20 कोड़ा कोड़ी का करेगा।
नारकी
और नील लेशा वाला मनुष्य अंत कोड़ा कोड़ी से ज्यादा बंद नहीं करेगा। बहुत फर्क है, अभी ये महाबंध में हुई थी बातें अपनी। वो एक दूसरे के साथ वो तो साधारण मनुष्यों की अपेक्षा वर्णन है, अभी उसमें भी हर गति में उस लेशा का अलग अलग भाव होगा, वहां पर उनके परिणाम अलग अलग होंगे। क्योंकि जो नील लेशा के अपने परिणाम भी असंख्यात लोक प्रमाण षष्ठान वृद्धि के स्थान है उसके अंदर हर एक में। अभी केवल नील लेशा कहने से सबका एक वाक्य में तो वर्णन नहीं कर सकते हम। है ना, और उसमें तो योग की प्रवृत्ति भी उसके साथ साथ ली हुई है, और यहाँ कषाय के उदय स्थान भी लेना है। कषाय के जो अशुभ यानी जो जिसको हम कहेंगे ना तीव्र कषाय, अशुभ जो लेशा है उसमें कषायों के संकलेश स्थान लेना है, और शुभ लेशा में विशुद्धि के स्थान लेना है। हाँ, देव जब मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंद करे, यानी संकलेश उत्कृष्ट है तो उनके प्रीत की जगह नहीं है, मध्य में। हाँ, कृष्ण के मध्य के साथ उसके संकलेश समान ले सकते, हाँ वो ले सकते हैं,
ले सकते
हैं, कृष्ण का मध्यम के साथ ले सकते हैं।
हाँ, कृष्ण का उत्कृष्ट के साथ ले सकते,
कृष्ण का उत्कृष्ट तो अलग ही जाति का होगा परिणाम,
पर
वो 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कर सकता है।
मेरे तो खाली शब्द इतना चाहता था कि देव का जो राग है वो मंद है, मनुष्य में जो उत्कृष्ट राग वाला जीव है और देव में जो उत्कृष्ट राग वाला जीव है, चारित्र मौनी की अपेक्षा उसमें फर्क है।
देखो देखो, केवल फर्क है ऐसा मत कहो। जैसे कोई मनुष्य है पांचवे गुण स्थान वर्ती है, युद्ध के लिए जा रहा है, और देव है, देव है चौथे गुण स्थान वाली, चौथे गुण स्थान वाला देव है, तो उसमें वो दोनों की पीत लेशा समझ लो। अभी तो इसके कषाय मंद कहेंगे हम पांचवे वाले के
मंद हो गया, नेत्र जी
दोनों की पीत लेशा अभी। हाँ। अभी समझे ना आप? हाँ। तो नहीं, वो उसकी क्रिया पर मत जाना, उसके वो देव है और ये मत जाना, वो तो हर एक की अपनी अपनी जो रेंज है कषायों की, विशुद्धि की, विसंकलेशों की, उसमें जाना।
इसीलिए मैंने पूछा ना कि चारित्र मौनी की अपेक्षा जो मनुष्य में उत्कृष्ट राग हो रहा है वो राग देव में होगा।
बिल्कुल होगा, क्योंकि अनंतानुबंधी है वहाँ पर। अनंतानुबंधी का उत्कृष्ट हो सकता है कि नहीं वहाँ पर भी? हम क्रिया की अपेक्षा मत देखो उसको, उनके क्या संकलेश नहीं है ना, तो वहाँ तो सुखी मानना पड़ेगा, उनके बहुत मंद उदय है ना। नहीं आएगा, उन्होंने ये कहा पांचवे गुण स्थान में भले शोक हो या अन्य कोई भी परिणाम है, तो पीत पद्म शुक्ल लेशा में उसका जो, तो पीत लेशा में आएगा, उसके जघन्य की तरफ आएगा, परंतु अशुभ में नहीं चला जाएगा। देखो अभी यहाँ 436 पेज पर पहले लाइन हो गया ना कि नहीं, लेशाओं के आगे। हाँ, भव्य सिद्धिक तीनों सम्यक्त्व, ये संहिता संयत की बात देखते रहते हैं, संगिक आहारक नहीं नहीं, वो प्रमत्त बाद में देखना है, ये पहले एक लाइन बाकी है ना पांचवे गुण स्थान में से, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब यहाँ प्रमत्त संयत जीवों के उघालाप कहने पर, यानी छठे गुण स्थान की बात अभी चलेगी, गुणस्थान उन्होंने बता ही दिया, तो छठा गुणस्थान प्रमत्त संयत गुणस्थान है। अब जीव समास कौन से होंगे, पर्याप्त के अपर्याप्त? और अभी हमने देखा था वो आहारक मिश्र की अपेक्षा पर्याप्त भी कहना पड़ेगा यहाँ पर, छठे गुणस्थान में सामान्य में और अपर्याप्त में ये सोचना दोनों। अब पर्याप्त या तो सामान्य लेंगे तो वहाँ अपर्याप्त का आलाप इंक्लूड करना, और इसमें तो पर्याप्त का आलाप अलग होगा और अपर्याप्त का अलग होगा। अपर्याप्त किस अपेक्षा? आहारक मिश्र की अपेक्षा, अन्य कोई नहीं। तो देखो, एक प्रमत्त संयुक्त गुणस्थान, दो जीव समास, छह पर्याप्तिया, छह अपर्याप्त, ये छह अपर्याप्त वो आहारक शरीर संबंधी लेना है, फिर 10 प्राण 7 प्राण, क्योंकि पर्याप्त पर्याप्त दोनों लिए। अभी छठा है तो चारों संज्ञाएं है। हाँ, अभी सातवें में जाएंगे तो एक कम कर देंगे। हाँ, अब गति कौन सी गतियों में? हाँ, मनुष्य ही गति है, पंचेंद्रिय जाति है, त्रस काय है। अब योग यहाँ गिनाना है, वैकृत वैकृत मिश्र नहीं होंगे और औदारिक मिश्र भी नहीं होगा। कारमण भी नहीं होगा, चार रूल आउट कर दिए हमने, तो 11 योग यानी मन के चार है, वचन के चार है, औदारिक है, आहार के दोनों है, क्योंकि हमने पर्याप्त अपर्याप्त दोनों गिने हैं। तो अपर्याप्त में कौन से योग होंगे अभी हम बाद में पढ़ेंगे, फिर अकेला अपर्याप्त होगा तो उसमें कौन से योग होंगे,
आहार मिश्रा और
कारमण कैसे होगा, आहार मिश्र होगा। कारमण छठे गुण स्थान में, नहीं 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 कारमण नहीं, ये कह रही थी। अच्छा अपर्याप्त में वेद कौन से होंगे,
अपर्याप्त में
वेद, पर्याप्तों के कितने वेद हो गए, तीन हो गए, अपर्याप्तों के पुरुष वेद, क्यों, आहारक शरीर वही जीव बांधते हैं जिनके स्त्री वेद का उदय पुरुष मनोपुस्तका नहीं है, यानी पुरुष वेद के उदय वाले के ही आहारक शरीर हाँ बनता है। तो बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हम पर्याप्त सामान्य के आलाप देख रहे हैं। तो 11 योग के बाद तीनों वेद, चारों कषाय, आदि के चार ज्ञान, तो मनपरे पर्याप्त में लेना क्या अपर्याप्त में लेना, अपर्याप्त हाँ वो एक साथ नहीं होते, एक साथ नहीं हो सकते हाँ, यानी छठे के अपर्याप्त में बहुत सारी विशेषता है, परंतु यहाँ दोनों को इकट्ठा लिया है तो जो होता है उसको सबको लिया। तो चार ज्ञान, सामायिक छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि, ये तीन संयम, आहारक वो अपर्याप्त में तो परिहार विशुद्धि को नहीं कहेंगे, आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से छह लेशाएं। अब अपर्याप्त में कौन सी लेशा कहेंगे, वो कहाँ कारमण का योग है, कापोत होगी, विग्रह गति कहाँ होती है, अपर्याप्त में तो वो तो शरीर, मूल शरीर का वर्ण तो है वहाँ पर, द्रव्य से कितनी होती है, कपोत होना चाहिए अपर्याप्त में। अच्छा यहाँ दिया ही नहीं है, नहीं हाँ देखो अपना जीव कांड निकालना, हाँ हमने टेबल तैयार किया था ना उस समय, वो डी लिखा है ना वो वाला, वो लेफ्ट साइड का जाड़ा, नहीं नहीं वही वही बराबर बराबर, सेकंड पतला वाला दूसरे भाग में ही है। प्रमत्त संयत चाहिए ना, प्रमत्त रचना, इसमें भी अपर्याप्त की अलग बात नहीं दी है। मनुष्यों में गुणस्थानों में नहीं है, शायद मनुष्यों में आएगी तो बात आएगी। देखो देखो पुरुष है क्या क्या अपना क्या चल रहा था, द्रव्य से एक कापुत, भाव से तीन शुभ, अप्रमत्त के अपर्याप्त, सॉरी प्रमत्त के, प्रमत्त के यानी आहार संबंधी अपर्याप्ति है ना, कपोत लेशा हो, नहीं ये तो सामान्य है, वहाँ उन्होंने किया ही नहीं, उन्होंने अपर्याप्त का अलग टेबल ही नहीं बनाया। अरविंद भाई कहते उनके पास लिखा है, हमने वो उस समय बोला था हाँ, उन्होंने वो पहली बार हमने वो बोला था तो लिख लिया है वहाँ पर, उसी के नीचे हम प्रमत्त संयत आलाप है ना, वहाँ पर्याप्त का लिख सकते हैं। ये जो प्रमत्त संयत का है वो तो पर्याप्तों के लिए तो घटित हो ही जाता है, सामान्य है वो पर्याप्तों के लिए। देखो देखो वो तो लिए ना उन्होंने सारे,
पर्याप्त में नहीं आएंगे ना,
पर्याप्त में नहीं आएंगे, बस योग में नहीं था। प्रमत्त के अपर्याप्त में
लिखना है ना,
हाँ उसको पर्याप्त लिखना है तो लिखो,
वो पर्याप्त लिखना है।
देखो देखो पहले हम क्या करेंगे, ऊपर के दो लाइन पढ़ेंगे, बाकी है वो फिर मैं आपको डिक्टेट करूंगी। द्रव्य से 6 लेशा लिए ना, भाव से 3 शुभ लेशा, भव्य सिद्धिक तीनों सम्यक्त्व, संगी आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। देखो यहाँ अपर्याप्त है फिर भी आहारक ही है, क्योंकि यहाँ अपर्याप्त कहने से वो विग्रह गति वाला अपर्याप्त नहीं है। तो प्रमत्त के
आहारक मिश्र में क्या वो भी कभी
आहारक संबंधी परमाणु ग्रहण कर रहे हैं,
वही कह
रही। तो देखो ये प्रमत्त संयत आलाप का जो टेबल है ना, उसी के नीचे, क्योंकि ऊपर तो लिखे ही है नाम, हमको वो केवल वहाँ संख्याएं लिखनी है, तो पर्याप्त भी लिखेंगे बाद में अपर्याप्त लिखेंगे। पर्याप्त में वो प्रमत्त गुणसान वही लिखना है, जीव समास में संप लिखेंगे, संगी पर्याप्त, संप यानी संगी पर्याप्त, छ पर्याप्तिया, प्राण 10। देखो देखो संगी पर्याप्त, छ प, प्राण के नीचे का जो टेबल है वहां पर, हाँ 10, ये उसी लाइन को जरा नीचे करो और उसमें पर्याप्त, हाँ हम पर्याप्त के कह रहे हैं,
पर्याप्त की बता रहे हैं,
पर्याप्त की,
अपर्याप्त की लिख रहे हैं,
वही तो घोटाला हो रहा है, क्योंकि हम दोनों ही लिख रहे थे ना, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों के अलग अलग लिखेंगे। वो लाइन नीचे तक ले लो, और उसमें पर्याप्त का अलग करो और अपर्याप्त का अलग करो। बताओ अभी आगे, पर्याप्ति 6 लिखी, प्राण के नीचे 10, संज्ञा 4, गति मनुष्य, इंद्रिय पंचेंद्रिय 1, काय में त्रस काय 1। हाँ अब योग में देखो, मन के 4, वचन के 4, औदारिक 1 और आहारक 1, 10। क्या 10 और 1 अपर्याप्त भी अभी हम नहीं बता रहे, हाँ ये मिश्र बिना 10, हाँ वेद अभी बोलो पर्याप्त है, तो 9वें गुणस्थान तक होते ना, तो 3 वेद, कषाय 4, ज्ञान 4, संयम 3, दर्शन 3, लेशा 6 और 3, द्रव्य से 6, भाव से 3, भव्य, सम्यक्त्व 3, संगी आहार अनि उपयोग दोनों
ना?
हाँ ये तो पर्याप्त के होंगे। अपर्याप्त, अपर्याप्त ने केवल वो हम आहारक मिश्र की अपेक्षा ले रहे हैं ना, वही प्रमत्त ही लेना, संगी अपर्याप्त लिखना, हाँ अपर्याप्तिया, प्राण 7 कहेंगे, संज्ञा 4, गति मनुष्य पंचेंद्रिय त्रस्काय योग एक ही होगा ना आहार मिश्र हाँ वेद भी एक पुरुष वेद कषाय चारो ज्ञान अभी मन परे भी नहीं होगा तीन तीन होगी परिहार विशुद्धि भी नहीं होगा तो दो संयम होगे सामायिक और छेदक स्थापना दर्शन तीन होगे अब लेशा द्रव्य की एक ही होगी कपोट द्रव्य की एक लेशा कपोट भाव की तीन भव्य अभी क्षायिक और क्षौक्षमिक दो होगे ना यहाँ पर औक्षमिक नहीं होता संगी आहारक ही कहना है इसको भी और दोनों उपयोग आहारक अनाहारक तो कार्मण का योग होता है यहाँ आहारक के परम आहारक मिश्र ले रहा है वो बराबर है ना आपने लिखा था ना उस समय अभी है दो चार मिनट अप्रमत्त का लेते हैं अप्रमत्त देखो जीवों के उघाल आप कहने पर एक सातवां गुण स्थान अभी ये सारे पर्याप्त ही उसमें तो कुछ अपर्याप्त की नहीं सोच एक संगी पर्याप्त जीव समास छहो पर्याप्तिया दसो प्राण यहाँ तीन संज्ञा है यह करेक्शन है यहाँ लिखा ना आहार भय और मैथुन ऐसा लिखा ना तो यहाँ भय आहार निकाल देना भय रखना फिर और निकाल देना तो भय मैथुन और यहाँ डालना और परिग्रह ये तीन संज्ञाएं क्योंकि आहार बिना तीन संज्ञाएं लिखना चाहिए था तो भय मैथुन और परिग्रह ये तीन संज्ञाएं होती है क्योंकि असाता वेदनीय कर्म की उदीर्णा का अभाव हो जाने से जैसे हम उदय की विच्छित कहते हैं ना जैसे उदीर्णा की विच्छित्ति यहाँ होती है उदय भले कहाँ तक रहेगा भैया ऊपर कहाँ चौदहवें तक किसी के असाता का है किसी के साता का है सामान्य केवली में हाँ गति एक मनुष्य है ना नहीं यहाँ पढ़ रहे थे असाता वेदने कर्म की उदीर्णा का अभाव जाने से अप्रमत्त संयुक्त के आहार संज्ञा नहीं होती किंतु भय आदि संज्ञाओं के कारणभूत कर्मों का उदय संभव है पॉसिबल है जाने होता है इसलिए उपचार से भय मैथुन और परिग्रह संज्ञाएं हैं मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति ये नीचे का टेबल से आप देख सकते फिर काय में त्रस्काय योग में मन के चार वचन के चार और औदारिक का योग नव योग तीनों वेद है चारों कषायें हैं केवल ज्ञान बिना चार ज्ञान है मतिशुता अवधि मनपरी है सामायिक छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि ये तीन संयम है केवल दर्शन बिना तीन दर्शन चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन लेशा में छह लेशा द्रव्य से और भाव से तीन शुभ लेशा पीत पद्म और शुक्ल भव्य सिद्धिक है तीनों ही सम्यक हो गया औक्षमिक क्षायिक और क्षौक्षमिक संगी है आहारक है और साकार अनाकार दोनों उपयोग वाले हैं यही रुकेंगे हम
जावानी के ज्ञान तय सुझे लो कालो सोवाणी मस्तकनं सदा देत हो
मयंक भाई